सो हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं आप सबके लिए। ज़रूर एक सीज़न और ख़त्म हो रहा है, जब क्रिसमस आता है, क्रिसमस आ रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ ख़त्म हो जाती है, फिर एक साल का इंतज़ार होता है। लेकिन हम जो मसीह हैं, अगर हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, तो विश्वासियों के लिए आज मैं कुछ छोड़ूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने यूहन्ना उसके 20 अध्याय को पढ़ा, और 20 अध्याय से थोड़ा सा हम आगे 4-5 पदों को मैं पढ़ना चाहूँगा, और दो स्थल में से पढ़ के फिर मैं कुछ परिचय में जाऊँगा, और फिर मैं उसके बाद तब परमेश्वर के वचन को कुछ शेयर करूँगा। यूहन्ना उसका 20 अध्याय 19 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्सेस फ्रॉम 19-23। यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय 19 पद से लेकर के 23 पद तक, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जब वे कह चुका तो उसने अपने हाथ और पंजर दोनों दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और जब वो ये कह चुका तो उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, यदि तुम किसी के पाप क्षमा करो तो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, यदि तुम किसी के पाप रखो तो वे रखे गए हैं। दूसरा एक स्थल प्रकाश वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 17-18 पद, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 17-18, 17-18 पद, जब मैंने उसे देखा तो मृतक के समान उसके पैरों पर गिर पड़ा, तब उसने अपना दाना हाथ मुझ पर रखा और कहा, भयभीत न हो, मैं ही प्रथम अंतिम और जीवित हूँ, मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में विचार करते हैं, यह अच्छा है, सुबह से मैंने बहुत सारे लोगों को संदेश भेजा या कहना चाहिए शुभकामनाएं दी, ईस्टर मुबारक हो, और बहुत सारे लोगों ने मुझे भी संदेश भेजा, और मैंने अपने संदेश में एक छोटा सा प्रश्न लिखा था, पुनरुत्थान दिवस आपके लिए क्या अर्थ रखता है। शायद मैं सोचता हूँ 3 या 4 जन नहीं उसका उत्तर दिया, बधाइयाँ बहुतों ने दी, बहुत लोगों ने किया, लेकिन उत्तर केवल 3 और 4 जन ने दिया। परमेश्वर जो हमारे जीवन में अवसर देता है वो इसलिए देता है कि हम उस अवसर का पूरा पूरा फायदा उठा सकें। दो प्रश्न आपके सामने मैं छोड़ना चाहूँगा, उस पर आज विचार करेंगे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से आप क्या समझते हैं? अभी शेखर भाई प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने स्मरण किया कि बहुत सारे लोग कलीसियाओं के, यहाँ तक नेताओं के, और आप जानते हैं नेताओं तो कैसी भाषा बोलते हैं, कितना प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया होगा उन्होंने पुनरुत्थान के साथ, अगर ऐसे जलसे में गए होंगे तो उन्होंने जय जयकार के नारे भी लगाए होंगे, लेकिन उनके लिए उसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं है। पर मैं और आप जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं या प्रभु के पीछे चलने वाला कहते हैं, हमने कहा कि हमने प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है या हम उसकी खोज में हैं, तो मेरे और आपके लिए पुनरुत्थान का से अर्थ क्या है, इसको क्या समझते हैं? दूसरी बात, इसने आपके जीवन में को कैसे प्रभावित किया है? इस पुनरुत्थान ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है? क्या इस पुनरुत्थान ने आपके जीवन को किसी तरह प्रभावित किया है? प्रभावित करना का मतलब क्या है? आपके जीवन में कुछ परिवर्तन है, आपके व्यवहार में, आपके बोलचाल में, आपके स्वभाव में, आपके चाल चलन में, आपकी इच्छाओं में, आपके विचारों में, आपके सोच में कुछ फर्क है या नहीं है, या जैसे पहले थे वैसे आज ही हैं? यदि पुनरुत्थान हमारे जीवन में, हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर रहा है। पहले भी झूठ बोलते थे, अब भी झूठ बोलते हैं। पहले भी गाली गलौज देते थे, अब भी गाली गलौज देते हैं। पहले भी धोखा देते थे, आज भी धोखा देते हैं। पहले भी छल करते थे, आज भी छल करते हैं। अगर ये वही है तो मात्र यीशु के प्रस्थान को मनाना या उसको स्वीकार करना क्या फायदा है? प्रभु यीशु मसीह जीवन को परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। और जो तीन चार पद हम अभी पढ़े हैं उस पर मैं आगे चल करके आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि किस प्रकार से प्रभु ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। सो मुझे और आपको इन बातों पर विचार करना है। यह सच है, प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए, पवित्र जीवन उन्होंने व्यतीत किया, दुख उठाया, क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज पिता के दाहिने हाथ विराजमान है और फिर से वो आएंगे ताकि समस्त संसार का वो न्याय करे। विश्वासियों का भी न्याय होगा, अविश्वासियों का भी न्याय होगा। विश्वासियों का न्याय इसलिए होगा ताकि उन विश्वास के जीवन के द्वारा परमेश्वर उनको पुरस्कृत करे। अविश्वासियों का न्याय इसलिए होगा, जिन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने उसका तिरस्कार किया, वो उन्हें अनंत दंड में डाले। दोनों का न्याय होगा। और इसलिए जब हम प्रत्येक वर्ष इस उत्सव को मनाते हैं तो क्या ये उत्सव मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन ला रहा है? क्या मैं धोखे से, छल से, झूठ से, चोरी से, अनुचित बातों से, गाली गलौज से, इन सारी बातों से क्या घृणा करता हूँ? अगर मैं वैसा ही हूँ तो केवल ये प्रोत्थान की बात केवल मेरे मस्तिष्क की बात है कि मेरे विचारों में या मेरे कुछ ज्ञान में परिवर्तन है। मैं कुछ जान गया हूँ, मैंने पढ़ लिया, सुन लिया, जान लिया और कुछ कर लिया। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। और इसलिए मुझे और आपको बहुत बार बार इस बात पर विचार करना चाहिए कि वास्तविक रीति से जो पुनरुत्थान है वो परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ये पुनरुत्थान जो है मेरे और आपके जीवन में बिना विश्वास के कार्यकारी नहीं होता। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में, उसके 13 और 14 पद में, यदि मरुओं का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह भी नहीं जलाया गया, यदि मसीह जलाया नहीं गया तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। इससे भी बढ़कर हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये साक्षी दी कि उसने मसीह को जिला उठाया, परंतु यदि मृतक वास्तव में जिलाए नहीं जाते तो उसने मसीह को भी नहीं जिलाया। अगर ये पुनरुत्थान, मेरे प्रियो, बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बाइबल केवल ज्ञान की पुस्तक नहीं है, बाइबल एक जीवन की पुस्तक है जिसमें जीवन की बातें पाई जाती हैं। और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए कि बहुत सारे धर्म थे क्योंकि एक और धर्म बना दो, नहीं नहीं नहीं, धर्म स्थापित करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए। मैं बार बार बोलता हूँ, ईसाई परिवार में पैदा होकर के भी लोग आज नरक में जा रहे हैं। मैं भी एक दिन ऐसा था, सारी रीति विधियों का पालन करता था लेकिन फिर भी मैं नरक में जा रहा था। क्रिश्चियन नाम रख लेने से, क्रिश्चियन कुछ रीति विधियों का पालन करने से, चाहे हम मैसी रख लें, चाहे विल्सन रख लें, चाहे अलेक्जेंडर रख लें, चाहे मैथ्यू रख लें, चाहे कुछ भी रख लें, वो नाम हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कराएगा। विश्वास, जब तक उस विश्वास का अनुभव मेरे और आपके जीवन में ना आए। और पौलुस इसी तरह से कहता है, यदि मरों का पुनरुत्थान नहीं है तो मसीह जिलाया नहीं गया और विश्वास, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है और इसी विश्वास ने ना केवल हमें इस पृथ्वी पर जीवन प्रदान किया है, लेकिन इसी विश्वास ने हमें मरने के बाद भी हमारे लिए स्वर्ग पर एक सुरक्षित स्थान तैयार कर दिया है। और एक बहुत बड़ी आशीष जो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। जब हम इस बात को पाते हैं तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा, पुनरुत्थान मुझे और आपको किस चीज़ के लिए प्रेरित करता है? केवल विश्वास करके उद्धार पाने के लिए नहीं, लेकिन इस संसार में, इस पृथ्वी पर एक जीवन व्यतीत करने के लिए, और वो जीवन पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो। प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा ये है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की अपेक्षा यह है कि इस पृथ्वी पर मैं और आप एक पवित्रता का जीवन व्यतीत कर सकें। बाइबल ये नहीं कहती कि हम बिल्कुल पूरी रीति से निष्पाप हो जाएंगे। दो शब्द हैं, निष्पाप और निर्दोष। निष्पाप सिनलेस इंग्लिश में बोलते हैं, और निर्दोष ब्लेमलेस। प्रभु यीशु मसीह में आकर के हम सिनलेस नहीं हो सकते, लेकिन ब्लेमलेस हो सकते हैं। और हमें इस बात को समझना है, जब तक इस पृथ्वी पर हैं हम पाप से संघर्ष करते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं और पुनरुत्थान के सामर्थ्य, कभी मैं थोड़ा परिचय में जा रहा हूँ, थोड़ा सोचता लंबा परिचय होगा, तब मैं उस स्थल पर आऊँगा। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन में उनका कार्य शुरू होता है परमेश्वर के आत्मा का, और जब अपने आत्मा के द्वारा कार्य करने लगते हैं, वो पहले सबसे पहले मस्तिष्क को नहीं बदलते लेकिन हृदय को बदलते। अगर मस्तिष्क बदल जाए और हृदय ना बदले तो सब कुछ बेकार है। हृदय का परिवर्तन जरूरी है, और परमेश्वर का वचन कहता है ये हृदय तो असाध्य रोग लगा है, इसके मन को कौन समझ सकता है, इसके भेद को कौन समझ सकता है। मरकुस में प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस के 7वें अध्याय 21-22-23 पद में कहा, और मनुष्य के मन से भीतर से सारी बुरी बुरी बातें, सोच विचार कुदृष्टि व्यभिचार और चोरी हत्या परिसंगमन, ये सब कुछ निकलते हैं और यही मनुष्य को शुद्ध करते हैं, यही मनुष्य को पवित्र करते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं और वो हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, तो प्रभु अपने आत्मा के द्वारा, अपने पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा, पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में जो अंदर ही बुराई है उसको बाहर निकालते चले जाते हैं। और जब वो बाहर निकालते जाते हैं तो धीरे धीरे जीवन जो है अंश अंश पवित्रता में बढ़ता चला जाता है, अर्थात हम दिन पर दिन निर्दोषता में बढ़ते चले जाते हैं। और इसलिए बार बार मुझे और आपको देखना है, जब हम इस बात की बात विचार करते हैं तो सच है, एक विश्वासी होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक विश्वासी होने के नाते आपके पास क्या संदेश है? जब मैं संदेश की बात कर रहा हूँ तो केवल सुसमाचार को बांटना नहीं, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, लेकिन क्या संदेश? आपका जीवन कैसा है? आपकी बोली भाषा कैसी है? आपका चाल चलन कैसा है? क्या आप अपनी पत्नी को रोज दिन भर में 5 बार मारते हैं? नमक थोड़ा हो गया तो खाना फेंक दिया? या आप अपने पति को दिन भर 10 बार भगती हैं? पड़ोसी क्या कहते हैं? अरे चर्च तो जाते हैं लेकिन इनका जीवन क्या है? क्या संदेश दे रहे हैं आप? संडे को आए, शाम को ईस्टर मनाया है, पार्टी में गए, टूनो को गए, आज तो ईस्टर मनाया है, मजा आ गया, ये दशा है। सोचे विचारी गंभीरता इस बात पर, क्या संदेश हम दे रहे हैं? आपका समर्पण वो हृदय परमेश्वर के प्रति किस प्रकार से है? क्या परिवर्तन है? परमेश्वर के प्रेम के प्रति आपका कितना परिवर्तन है? उसकी आज्ञा पालन के प्रति कितना परिवर्तन है? उसके विश्वास के प्रति कितना परिवर्तन है? क्या है? मेरे प्रियो, ये गंभीर प्रश्न है। और इसलिए हमें ईस्टर को केवल एक त्यौहार के रूप में नहीं मनाना चाहिए। त्यौहार आएगा और जाएगा। अगर अगले साल मुझे आप में से किसी को अवसर ना मिले कि हम पुनः ईस्टर मनाएं, क्या होगा? यदि आज प्रभु आ जाए, मेरे प्रियो, एक विश्वासी नाते पुनरुत्थान की जब हम बात करते हैं, जब पुनरुत्थान की बात करते हैं, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? अब यहाँ पर जब 20 अध्याय में हम पढ़ रहे हैं तो हमने केवल 4 या 5 पद पढ़े। इन 4 और 5 पदों में कम से कम 5 और 6 बातों को हम देखना चाहेंगे। इन चेलों के बारे में सोचिए थोड़ा सा, चेलों की क्या स्थिति थी, लेकिन क्या परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया है, और वो चीज़ को हम देखना चाहेंगे। 19 पद जो हमने पढ़ा था, पहली बात चेलों की स्थिति, दूसरी बात चेलों की आवश्यकता, तीसरी बात चेलों का प्रोत्साहन, चौथी बात, चेलों को निर्देश। पांचवी बात, चेलों को अधिकार। इन 19 पद से लेकर के 23 पद तक में हम इन बातों को देखना चाहेंगे। थोड़ी सी देर आइए, क्या लिखा हुआ है। उस दिन अभी प्रभु यीशु मसीह सुबह जी उठे हैं, उससे पहले मरियम मगदलीन दर्शन देख चुकी है, और मरियम मगदलीन दर्शन देखा है, कुछ लोगों को उसने बता भी दिया है, ये दिया। लेकिन उस पद में लिखा हुआ है कि अब प्रभु यीशु मसीह चेलों पर प्रकट हुए। क्या हो रहा है? उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या हो चुकी है, सुबह से संध्या, सुबह प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। संध्या के समय में जब वो वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, ये थी उन शिष्यों की स्थिति। क्यों यहूदियों के डर के मारे बंद थे? अभी तक जब तक ये प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, प्रभु यीशु मसीह के सारे आश्चर्य कर्मों में शामिल होते थे, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते थे, उनके साथ चेले आगे पीछे नाचते थे, सब कुछ था। और यीशु के कारण इनके अंदर भी बहुत अधिक घमंड था, अरे हम प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य, ओ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ में से 120 को चुना, 120 में से फिर उसने 70 को करा, अब 70 में से उसने हमें 12 को चुना है, हम 12 बहुत विशेष लोग हैं। और ये सोच करके, इस बात को विचार करके, वे बहुत ही अधिक आनंदित करते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं जाना था कि क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह बार बार बता रहे थे अवश्य कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए, मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जी उठे, सब कुछ बार बार बताते हैं। लेकिन इन चेलों की आंखें, ना तो आंखें खुली थी, ना मस्तिष्क खुला था, ना बुद्धि खुली थी, कुछ नहीं खुला था। ये तो केवल उस समय यीशु के साथ रह रहे के उन सारे आनंद का भोग कर रहे थे। और मेरे प्रियो, कितनी बार हमारा जीवन भी इसी तरह से यीशु के साथ रहता है। हम मसीह हो गए, मौजी मौज है, हमारा जीवन बिल्कुल अलग रीति से हो जाता है। लेकिन अब क्या हो गया? अब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, और जैसे ही मृत्यु हो गई, पकड़ लिए गए, सारे चेले तितर बितर हो गए। अब चेले तितर बितर हो गए, अब तो यीशु मसीह कब चले गए, अब क्या होगा? अब ये यहूदियों के डर के मारे कमरे में जाकर बंद कर दिया, लॉक कर दिया, और अंदर बैठ गए। अगर बाहर निकलेंगे तो यहूदी हमसे पूछेंगे, तुम भी तो थे यीशु के साथ, तो जैसे पतरस ने इनकार करा, नहीं नहीं मैं नहीं था, ये भी इनकार करेंगे। क्यों? भय का आत्मा इनके अंदर था। वो कह रहा है, लिखा हुआ है, डर के मारे बंद थे। उन्होंने दरवाजे को डर के मारे बंद कर लिया था। मेरे प्रियो, बार 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 डर का शब्द आता है। आदम की वाटिका से हम डर को देखते हैं, और इसीलिए मैं बार बार स्मरण दिलाता हूं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय भी जब संदेश पहुंचाया गया तो यही था, डरो मत, तुम डरो मत, मैं तुम्हें आनंद का समाचार सुनाता हूं। यहां पर भी स्थिति इन चेलों की डरी हुई थी, क्योंकि अब यहूदी लोग हमारी मुसीबत कर देंगे, ये हमें भी पकड़ के, तू यीशु के साथ था, तू बहुत ज्यादा चिल्लाता था, आगे बढ़ता था, चल तुझे, और इसलिए अब यीशु डर के मारे बंद थे। ये स्थिति उनके जीवन में, भय था उनके जीवन में, निराशा थी, अब क्या होगा। वे परमेश्वर के को नहीं जानने पाए थे, सुना था, देखा था, सब कुछ था, लेकिन अभी तक ना उनके हृदय में कुछ काम था, न मस्तिष्क खुला था। कितनी बार मेरे और आपके साथ दिया, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, कोई इधर से चर्चा कर रहा है, कोई इधर से चर्चा कर रहा है, कोई इधर से चर्चा कर रहा है। कई बार प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे जीवन में भी काम कर देते हैं। प्रार्थना मांगी, ठीक है, प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दे दिया, अद्भुत रीति से, लेकिन कुछ समय बाद हम भूल गए। ये स्थिति इनकी स्थिति, ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, इनको अपनी चिंता है हम मार ना डाले जाएं, इसलिए इन्होंने अपने आप को ऐसा रखा हुआ है। मेरे प्रियो, आज आपको संसार में कौन सा डर सताता है? मौत का डर, रिश्तेदारों का डर, पड़ोसियों का डर, अपनी सफलता का डर, कौन सा डर? और जिसके कारण जैसे प्रभु को देखना चाहिए, आप नहीं देख नहीं पाते, बजाय ये इस बात को याद रखते कि प्रभु ने ऐसा कहा है, और इसलिए बाहर निकलते हैं, नहीं 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 नहीं, यहां तक कि स्त्रियों ने पहले प्रभु यीशु मसीह को देख लिया था, वे उनकी भी आवाज सुनने से वंचित थे। और मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में डर जो है सबसे ज़्यादा जीवन में हानि पहुंचाता है। पाप का भय जरूर होना चाहिए हमारे जीवन में। तब आगे चल के क्या हुआ, जब ऐसी दशा में थे, 19 पद में, तब यीशु आकर उनके मध्य खड़ा हो गया और उसने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। कितना प्यारा प्रभु हमारा। उसने प्रश्न नहीं किया, तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। उसके क्या शब्द थे, तुम्हें शांति मिले। मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन को अच्छी रीति से जानता और पहचानता है, मेरे और आपके जीवन की परिस्थितियों को पहचानता है, मेरे और आपके जीवन की स्थिति को पहचानता है, मेरे और आपके जीवन की आवश्यकता को पहचानता है। और वो जान रहा था कि इनको इस समय ये चीज की आवश्यकता है। वो सार्वभौमिक परमेश्वर है, सर्वाधिकारी परमेश्वर है, वो दरवाजे बंद हैं क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और वो फिर भी उनके बीच में आकर खड़ा हो गया, दरवाजा उसको रोक नहीं सका। और तब प्रभु कहता है, तुम्हें शांति मिले। और मेरे प्रियो, ये सच में ये शब्द एक ऐसे शब्द हैं जो हिम्मत बनाने वाले शब्द हैं, जो साहस दिलाने वाले शब्द हैं। आज इस संसार की स्थिति को देखते हुए, व्यस्तता को देखते हुए, अरे कल सरकार क्या करेगी, अरे सरकार के नियम बदल रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है तो वैसा, हम जरूर कई बार थोड़ा सा विचार आता है, पर फिर प्रभु हमें खड़ा करता है क्योंकि हमारी दृष्टि प्रभु के ऊपर लगी रहती है। उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। वो ऐसा परमेश्वर जो हमारी आशाओं को जानता है, हमारी समस्याओं को जानता है, हमारी चिंताओं को जानता है, हमारी परिस्थितियों को जानता है, हमारी निराशाओं को जानता है। वो मुझको और आपको अपने हमारे जाने से अधिक कहीं जानता है। जितना अधिक मैं अपने आप को नहीं समझ सकता, जितना अधिक आप अपने आप को नहीं जान सकते या नहीं समझ सकते, उससे कहीं बढ़कर वो आपको जानता है, वो मुझे जानता है, ऐसा परमेश्वर है। और इसलिए उसने यहाँ पर वो करके ये दिया। अभी भी जब प्रभु खड़ा हो गया उनके बीच में, क्या लिखा हुआ है, तब उसके बाद 20 पद में उसने क्या करा, अपने हाथ के पंजर उनको दिखाए। जब वो कह चुका, अभी भी ऐसा लगता है कि शायद उनको यकीन करना मुश्किल था, लेकिन तब उसने क्या करा, अपने हाथ के पंजर, देखो ये वो हाथ हैं जिसमें कीले छेदी गई हैं, मैंने तुम्हारे लिए इन हाथों पे कीले छिदवाई हैं, क्रूस पर जब मैं टांगा गया था इतनी हाथों पर कीले छेदी गई थी और मुझे टांगा गया था। उन्होंने उस पंजर को दिखाया और तब ये लोग चौंके। मेरे प्रियो, काश मैं और आप भी अपनी कठिन परिस्थिति में, समस्याओं में, चिंताओं में, विश्वास की आंखों के द्वारा, काल्पनिक विश्वास की आंखों के द्वारा प्रभु की इस वेदना को देखना सीख सकें, प्रभु के इस पंजर को देखना सीख सकें, हमारी दृष्टि उसके पंजरों पर आने पाए, हमारी दृष्टि उसकी पीड़ा और वेदना पर आने पाए, हमारी दृष्टि उसके कांटों के ताज पर आने पाए। मेरे प्रियो, हमारी दृष्टि उस पर आने है। और तब क्या होता है, जब हुआ तब एकदम परिस्थिति बदल जाती है। क्या लिखा हुआ है, वे प्रभु को देखकर आनंदित हुए, चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। उनके हृदय में अभी जो निराशा थी, हताशा थी, भय था, एकदम से उनके हृदय में आनंद आ गया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, फिर प्रभु ने कहा, उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। और प्रभु अब तीसरी बात उनको प्रोत्साहित कर रहा है, ना केवल चेलों की स्थिति इस प्रकार की है, ना केवल प्रभु यीशु मसीह उनकी आशाओं को देख रहे हैं, अब प्रभु यीशु मसीह आकर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। किस तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं, इन शब्दों के द्वारा प्रोत्साहित कर रहे हैं, वचनों के द्वारा प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपने हाथों को दिखाने के द्वारा उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और तब वो कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और तब उसके बाद वो एक निर्देश देते हैं, क्या निर्देश कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पिता ने कैसे भेजा, किस उद्देश्य से भेजा, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो आरंभ से हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने, यूहन्ना ने सुसमाचार प्रचार किया, पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ। ये बाइबल का आरंभ से, जिस दिन से आदम हवा पाप में गिरे, परमेश्वर का एक ही वचन था कि लौट आओ, पश्चाताप करो, लौट आओ, पश्चाताप करो, एक ही प्रचार। समय समय पे इज़ेकेल की पुस्तक में पढ़िए, यशाया की पुस्तक में पढ़िए, यर्मिया की पुस्तक में पढ़िए, इसके बाद नए नियम में आइए वहाँ पढ़िए, यौना बपतिस्मा देने वाले द्वारा पढ़िए, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पढ़िए, उसके बाद प्रेरित उद्धार पढ़िए, यही वचन मैं तुम्हें भेजता हूँ। काय को भेज रहा है, एक विशेष अभिप्राय से भेज रहा है। तुम्हें कमरे में बंद रह करके बैठने की जरूरत नहीं है, कमरे से बाहर निकलो, अपने बहस से बाहर निकलो, अपनी निराशा से बाहर निकलो, अपनी हताशा से बाहर निकलो, अपने अविश्वास से बाहर निकलो। और मेरे प्रियो, कितनी बार हम अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में ऐसे प्रश्नों को बांध लेते हैं कि हम उन सारी चीजें बाहर नहीं निकल पाते, और ना निकलने के कारण हमारा विश्वास अविश्वास में बदल जाता है, हमारी आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता में बदल जाती है, हमारा प्रेम एक दिखावे का केवल प्रेम रह जाता है और हम पीछे हटते चले जाते हैं। लगता तो है कि हम जीवित हैं, लगता तो हम कलीसिया में जा रहे हैं, लेकिन जैसे परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता होनी चाहिए, जैसे उसके वचन में बने रहना चाहिए, जैसे उसके वचन के साथ मिलकर के मुझे जीवन व्यतीत करना चाहिए, धीरे 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 टलता चला आता है, दूर होता चला आता है। फिर हमारे शब्द क्या आते हैं, चाहता तो हूं मैं, चाहती तो हूं मैं, लेकिन मैं बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं मिलता, या ये समस्या आ जाती है, या ये समस्या आती है। आपको नहीं मालूम, मेरे पास नौकरी इतनी कठिन है कि स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, सब परेशान करे रहते हैं और समय नहीं निकल पाता। कारण टीचर समस्या नहीं है, प्रिंसिपल समस्या नहीं है, नौकरी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि आपने अपनी नौकरी को, अपने टीचर को, अपने जॉब को, अपनी दूसरी चीज को पहली प्राथमिकता दी है, परमेश्वर को दूसरी प्राथमिकता। और उस समस्या का समाधान जब तक नहीं हो सकता जब तक आप स्वयं उस बंद कमरे से अपने आप को बाहर ना निकालें। और उसके लिए विश्वास की जरूरत है, साहस की जरूरत है। और तब वो कहता है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। ये एक अधिकार है, एक निर्देश है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए हर सुसमाचार में, यहाँ पे भी वही सुसमाचार आ रहा है, वही संदेश आ रहा है, वही निर्देश आ रहा है जो उसने मत्ती उसके 28 अध्याय में दिया, लूका में दिया, या मरकुस के 16 अध्याय में दिया, जाओ जाति के सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ तुम मेरे गवाह बन के रहो। चेलों को यही कहना चाह रहा है, घर से बाहर निकलो, तुमने जी प्रभु यीशु मसीह की जी उठी सामर्थ को देख लिया, तुमने देख लिया जो मैं तुम्हारे लिए एक दिन मारा गया था, आज मैं जी उठा हूं, और ये पुनरुत्थान की सामर्थ को लेके जाके कह सको कि हमने उसको देखा। यही कारण था जब प्रेरित काम में कलीसिया आराम हुई तो ये जितने प्रेरित थे बार बार चिल्ला चिल्ला करते, हमने उसको देखा है, हमने उसको सुना है, हमने उसको जाना है, जिसको तुमने पकड़ कर क्रूस पर मरवा डाला और गाड़ दिया, उसी को परमेश्वर ने तीसरे दिन मुर्दों में जी उठाया, हम उसके गवाह हैं, हम उनके गवाह हैं। उनकी स्थिति बदल गई, उनका विश्वास बदल गया, उनके सब कुछ बदल गया। मेरे प्रियो, क्या इस चीज़ का आपने अनुभव किया है? कहता है मैं वैसे ही भेजता हूँ। और मेरे प्रियो, तब लिखा हुआ है, अब क्या कर रहा है वो 22 और 23 पद में, न केवल उसने निर्देश दिया, न केवल उसने करा, लेकिन अब उसने चेलों को एक अधिकार दिया है, एक अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? कहता है जब वो ये कह चुका तो उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। इस पद को लोगों ने बहुत गलत रीति से अनुवादित किया है या प्रचार किया है, और कितने लोग आजकल लोगों पर फूकने लगे हैं, आप फूकेंगे और गिर जाएंगे, वो गलत है, कि बाइबल ऐसे नहीं बताती है। बाइबल में जब भी परमेश्वर ने किसी को दर्शन दिया वो औंधे के मुंह के ऊपर गिरा है, ऐसे नहीं लेट के गिरा, और अगर गिर ना पाए तो धकेल दे। कई जगह गलत शिक्षाओं से हमें सावधान रहना है। पवित्र आत्मा फूकते हैं और फूके तब फिर भाषण मैं भाषाओं के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इसके अर्थ को समझना क्यों है, ये क्या कारण, इसके अंदर भेद क्या है, क्या इसके अंदर भेद है। वो कह रहा है कि जब वो कह चुका तो उसने उन्हें फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। आपको याद है जब परमेश्वर ने अदम की वाटिका में पहले मनुष्य की सृष्टि की थी तो परमेश्वर ने क्या करा था, परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। अब वो जो परमेश्वर के रूप में था, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, पाप के कारण वो रूप बिगड़ गया और अब मनुष्य जीवित प्राणी की जगह मृतक बन गया। इसीलिए मृत्यु उसके अधिकार में आ गई और मृत्यु उसके जीवन में आ गई और वो उसी में चलता रहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा उसकी पुनः उसने अपने उस सामर्थ को, जो पुनरुत्थान की सामर्थ है, अपने शिष्य को दर्शाने के द्वारा, ये मैं तुम्हें नया जीवन तुम्हें डाल रहा हूं, जिस जीवन को प्राप्त करके तुम मेरे गवाह बनोगे। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना एक नए जीवन को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना उसकी आत्मा को नई रीति से प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना उसकी सामर्थ को प्राप्त करना है। वो जादू टोना ड्रामा का नहीं है, इसको हमें वेद को समझना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम अभी तक उस संसार में थे, पाप के कारण मृतक थे, लेकिन अब मैं तुम्हें एक नया आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। क्या इस यरमिया की पुस्तक में उसने नहीं लिखा था, जब नई वाचा दी उसने कहा था। और इसलिए परमेश्वर ने उनके साथ ऐसा किया और लिखा है ये पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा, ये पवित्र आत्मा तू क्या करेगा, यदि तुम किसी के पाप क्षमा करो तो वो इनके क्षमा कर दिए जाएंगे, यदि तुम किसी के पाप रखो तो वे रखे जाएंगे। मतलब क्या है, पाप क्षमा करने का अधिकार मेरा और आपका नहीं है, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह का है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको एक बीच में इस्तेमाल करता है कि हम किसी भी मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके लिए उसके लिए क्षमा मांगने के तैयार हो सके। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनता है और जब वो दूसरे भाई के साथ बैठता है और उसके भाई उसके लिए प्रार्थना करता है तो भाई प्रार्थना करता है प्रभु आज इसने आप पर विश्वास किया है, आप इसके अपराधों को क्षमा कीजिए, इसको अपनी संतान बनाइए, इसको अपना बालक बनाइए, इसको अपना बालिका बनाइए, ये आपके जीवन में राज करेगा। क्या हो रहा है, यही काम हो रहा है। कई समय स्थल हैं इस तरह से मिलते जुलते हैं जो परमेश्वर के वचन में है, लेकिन हमें समझना है। अर्थात फिर से एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब उड़ाव पुत्र वापिस आया, किसने उसको गले लगाया, पिता ने गले लगाया था, जैसा था गंदा था, लेकिन फिर उसको सजाया किसने, उसको संवारा किसने, उसके कपड़े नए किसने बनाए, नए उसको जूते किसने बनाए, अंगूठी किसने बनाई, किसने बनाई, उसने सेवकों से कहा, अपने नौकरों से कहा जाओ तुम इसको नहलाओ, इसके वस्त्र पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ। उसने अपने सेवकों को इस्तेमाल किया। और मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे जो आगे चल के सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा बहुत सारे लोगों को एक नई रीति से परमेश्वर के राज में प्रवेश करा रहे थे। और वही सेवा आज प्रभु ने मुझे और आपको विश्वासी होने के नाते दी है। जब किसी के साथ सुसमाचार बांटते हैं देते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हमें समझना है, ये मतलब नहीं है कि ठीक है मैं पुरोहित हूं, मेरे पास आना है, अगर मैं क्षमा करूंगा तो क्षमा हो जाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं, गलत है, बाइबल ये नहीं बताती। केवल पाप क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को है। हम सहायक बनते हैं, हम मददगार बनते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसके कार्य को, उस व्यक्ति के जीवन में होने के लिए कार्य साधन बन जाते हैं। मेरे जीवन को, आपके जीवन को किसी ना किसी प्रभु के जन ने बनाने में यहाँ तक मदद करी है। मैं ऐसे नहीं बना, मैं जानता हूँ कितने लोगों का मेरे जीवन को बनाने में आता है, कितने सेवकों ने मेरे जीवन में परिश्रम किया है, उनकी प्रार्थना है, उनकी सलाह है, उनकी शिक्षा है, उनकी डांट है, उनकी ताड़ना है, बहुत कुछ है जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे बनाया है। आपके जीवन में भी यही साक्षी है। तो परमेश्वर अपने शिष्य को क्या कराए, एक अधिकार दे रहा है।
कैसे लोगों, कौन लोग जो एक समय में निराशा में थे, हताशा में थे, परेशान थे। ओ मेरे प्रियो, जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और प्रभु के उन हाथों को देख करके अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत शांति आएगी, वो शांति जो मनुष्य के समझ से परे है। दूसरा थिस्सलुनीकियों तीसरा अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर जो तुम्हें हर परिस्थिति में वो शांति जो समझ से पार है वो तुम्हें देगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 16 पद। यशायाह में, भजन संहिता में बहुत सारे पद हैं जहाँ हम देख सकते हैं जहाँ प्रभु शांति के बारे में बात करता है। यशायाह 45:7 में वो पिता की शांति, इफिसियों 2:15 में पुत्र की शांति, रोमियों 14:17 में पवित्र आत्मा की शांति, बहुत सारे पद हैं जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर शांति का दाता है, पर ना केवल शांति लेकिन अधिकार। और मेरे प्रियो, ये अधिकार सबसे पहले मुझे और आपको कहाँ से मिलता है? इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। ना तो वे लहू से, ना वे मनुष्य की इच्छा से, ना वे शरीर की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। यह अधिकार है। और प्रभु यीशु मसीह ये जी उठने की सामर्थ के द्वारा ये दे रहा है। और इसके बाद हम आगे चल के देखते हैं, मैंने केवल एक स्थल को लाया हूं, लेकिन अगर आप बढ़ते चले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक 10 अलग अलग स्थानों में अपने आप को लोगों के सामने प्रकट किया। क्यों? अगर जी उठने का तुरंत तुरंत चला जाता तो कहता, अरे उसको तो देखा ही नहीं, किसी ने जी उठा, और तब और उसके लिए मिथ्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उसने लोगों के सामने, सबसे अधिक 500 लोगों के सामने, पहला क्रंथियों उसके 15 अध्याय के जो पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा वहाँ पर कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह वर्णन करता है पौलुस को भी, औरों को भी, और 500 लोगों को किस प्रकार से उसने दर्शन दिया। सो मेरे प्रियो, संक्षिप्त में, पुनरुत्थान मेरे और आपके जीवन को ना केवल पाप से छुड़ाता है, लेकिन पाप से छुड़ाने के साथ साथ मेरे और आपकी स्थिति को बदलता है, मेरे और आपकी आवश्यकता को बदलता है, मेरे और आपके जीवन में प्रोत्साहन लाता है, मेरे और आपके जीवन में एक नया निर्देश देता है, नया आज्ञा देता है, और उसके साथ साथ मेरे और आपके जीवन में एक नया अधिकार देता है। और अधिकार क्या है? ना केवल हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, लेकिन ये अधिकार कि हम उस अधिकार में होके परमेश्वर के राज के वारिस हो जाते हैं। वो अनंत काल का राज वो मेरा और आपको बन जाता है, और इससे बड़ी आशीष और क्या होगी। सो परमेश्वर मेरे और आपकी सहायता करे अंतिम में विचार करने के लिए, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह ने आपकी स्थिति को बदला है? आपने यीशु को पाया, लेकिन आप क्या हैं? उसी बंधन में रह रहे हैं, उसी जकड़ी स्थिति में रह रहे हैं, उसी पराजय के जीवन में रह रहे हैं, उसी हारे के जीवन में रह रहे हैं। आपके आसपास के लोग कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, कोई कुछ और नहीं देखते हैं, किस रीति से रह रहे हैं? आपकी जो वास्तविक आवश्यकता है, जो सचमुच में उस शक्ति की, उस सामर्थ्य की, शांति की जो परमेश्वर दे सकता है, आपके जीवन में मिलती जा रही है? क्या प्रभु यीशु मसीह में आपके जीवन प्रोत्साहन है, और प्रोत्साहन में होकर आप विश्वास के साथ आगे जीवन में बढ़ते जा रहे हैं? क्या आप उस परमेश्वर के निर्देश को लेकर के पालन करने के लिए तैयार हैं? जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, जाओ और सारी जातियों के लोगों सुसमाचार प्रचार करो। हमने अभी पढ़ा कि जो सदस्य बनते हैं इस बात की वाचा बांधते हैं कि हम कलीसिया के सुसमाचार के कार्य में लवलीन रहेंगे, दूसरों को साक्षी देने द्वारा, और प्रयास करेंगे कि हम कलीसिया के कार्य में और अधिक सुसमाचार कार्य में लग सकें। वो अधिकार जो किसी के जीवन के निर्माण करने का अधिकार है, जैसे मैंने उड़ाऊ पुत्र का अधिकार है, बहुत सारे बाइबल में उदाहरण है। परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। अंतिम प्रश्न, क्या ये इस वर्ष का प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान आपके जीवन में क्या कोई नया परिवर्तन लाएगा? आज जो आप प्रोत्थान के दिवस को मना रहे हैं, क्या आपके जीवन में कोई नया परिवर्तन लाएगा? क्या आप इस बात पर विचार करेंगे? क्या परमेश्वर सामने कोई निर्णय लेंगे? क्या परमेश्वर के सामने आप कुछ बात सोचेंगे?
आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, जिस जगह में रह रहे हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपके सामने व्यवहारिक बातों को रखा है, क्या वह हमारे जीवन में होगा? आइए हम प्रार्थना करें।